हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। माधुरी रायजादा हाउस से निकलकर वापस ऑफिस पहुंची और अपने कैबिन में आकर काम करने लगी। ध्रुति की हालत देखकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। एक लड़की होने के नाते वो उसका दर्द समझ रही थी, इसलिए गुस्से से उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। ये गुस्सा उसे अर्णव पर आ रहा था, पर वो उसकी एक मामूली सी एम्प्लॉई थी, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकती थी। अभी उसे आए कुछ मिनट ही बीते थे और वो खुद को पूरी तरह से शांत भी नहीं कर सकी थी कि उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला और कबीर ने अंदर कदम रखते हुए उससे सवाल किया, माधुरी, काम हो गया? कबीर की आवाज़ सुनकर माधुरी ने गुस्से भरी खूनी लाल आँखों से निगाहें उठाकर उसे घूरा और दांत पीसते हुए बोली, हाँ, हो गया। उसके बोलने का लहजा और गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर कबीर चौंक गया और हैरानगी से बोला, माधुरी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो तुम? कबीर, बात मत करो तुम मुझसे, क्योंकि अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि जो मेरे सामने आएगा मैं जान ले लूंगी उसकी, माधुरी ने बेरुखी और गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर कबीर और ज्यादा चौंक गया और हैरानगी से बोला, मधु, क्या हुआ है तुम्हें? माधुरी ने घूर कर उसे देखा और खींचते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर तुम्हारे दोस्त का दिमाग खराब हो गया है। कोई किसी लड़की के साथ ऐसा सुलूक करता है क्या? दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता। तुम्हारे दोस्त ने क्रूरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। क्या हाल किया है उसने एक रात में धृति का कि मुझसे देखा तक नहीं गया उसे। हद होती है किसी बात की। पहले मजबूर करके जबरदस्ती उससे शादी की और अब पति बनकर ऐसे टॉर्चर कर रहा है उसे। अगर अर्णव तुम्हारा दोस्त न होता तो माँ कसम आज मैं उसका वो हाल करती कि उसकी सात पुश्ते तक याद रखती। माधुरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पहले तो कबीर परेशान सा उसको देखता रहा कि आखिर माधुरी किस बात पर इतना भड़क रही है, पर जब उसने ध्रुति का नाम सुना तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। माधुरी के चुप होते ही उसने बिना किसी भाव से कहा, दुश्मनी ही निभा रहा है वो ध्रुति से, तो टॉर्चर ही करेगा उसे। कबीर की ये बात सुनकर माधुरी का दिमाग गुस्से से भन्ना उठा। वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और उस पर गुस्से से चीखी, अच्छा तो ऐसे निभाते हैं दुश्मनी? क्या तुम मर्दों के पास औरतों से दुश्मनी निभाने का एक यही तरीका होता है कि उसके मान को भंग करो, वहशी दरिंदे की तरह नोच खाऊं उन्हें, उन्हें वो जख्म दो जो हर पल उनके एक नई मौत मरने पर मजबूर करे, जिसकी टीस कभी कम न हो? क्या दुश्मनी निभाने का और कोई तरीका नहीं? और मैं पूछती हूँ कि आखिर धृति ने ऐसा क्या किया है जिसकी इतनी बड़ी और भयावह सजा मिल रही है उसे? तुमने चेहरा देखा है उसका, इतनी मासूमियत है उस चेहरे पर, मैं मान ही नहीं सकती कि उसने ऐसा कुछ गलत किया होगा जिसके बदले वो ये सब डिजर्व करती हो या ऐसा सुलूक किया जाए उसके साथ। कबीर, मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं बता रही हूँ तुम्हें कि अर्णव जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, और उसका साथ देकर तुम जो उसकी तरफदारी करके उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो, तुम उससे भी ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, और देखना एक ना एक दिन इसका एहसास तुम्हें और अर्णव दोनों को होगा। मैं भले धृति को नहीं जानती कि किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है वो, पर दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो लड़की अपने परिवार के लिए ये सब खामोशी से सह सकती है वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, और जिस दिन हकीकत तुम्हारे और सर के सामने आएगी दोनों अपने किए पर बहुत पछताओगे, अपनी ही नजरों में गिर जाओगे, और तब कितना ही प्रायश्चित करने के बाद भी तुम्हें और अर्णव को अपने किए गुनाहों के लिए माफी नहीं मिलेगी। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे ना तुम्हारा चेहरा देखना है और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। माधुरी की आंखों में धृति के लिए दर्द और हमदर्दी नजर आ रही थी। कबीर ने खामोशी से उसकी पूरी बात सुनी, फिर बेबसी से सर झुकाते हुए बोला, तुम नहीं जानती माधुरी क्या किया है उस लड़की ने, क्या खोया है अर्णव ने उस लड़की की वजह से। नहीं जानती तुम कि खुद अर्णव कितना तड़प रहा है। वो इस वक्त मेरी तो क्या किसी की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके सर पर बदला लेने का जुनून सवार है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी? अरे मैं तो इस शादी के भी खिलाफ था, पर अर्णव इस मामले में मेरी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और तुम उस लड़की के लिए ज्यादा हमदर्दी मत पैदा करो अपने मन में, वो लड़की इस लायक ही नहीं है। उसके मासूम चेहरे के पीछे एक चालबाज शातिर दिमाग छुपा है। उसने जो किया है उसके लिए ये सजा तो बहुत कम है। जब तुम्हें उसकी हकीकत मालूम चलेगी तो तुम विश्वास नहीं कर सकोगी कि कोई लड़की इतना नीचे भी गिर सकती है। इसलिए प्यार से कह रहा हूँ तुम्हें कि दूर रहो उस लड़की और इस मामले से, अर्णव संभाल लेगा। कबीर ने अपनी बात कही और वहां से चला गया। माधुरी बस उसे देखती ही रह गई। कबीर के कदम सीधे अर्णव के कैबिन के बाहर रुके, जहां घुसने के लिए उसे नॉक करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो सीधा अंदर चला आया। अर्णव चेयर से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था और अपनी उंगलियों से अपनी भौहों की मसाज करते हुए किसी गहरी सोच में गुम था, जब उसके कानों में कबीर की आवाज पड़ी, अर्णव तूने धृति के साथ क्या किया है? अर्णव ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोल दीं। उसके ठीक सामने कबीर खड़ा था, जिसके चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद था। अर्णव ने एक नज़र उसे देखा, फिर वापस आंखें बंद करते हुए बोला, करना तो वो सब चाहता था जो वो औरों के साथ करती है, पर अफसोस कि उसके जितना नीचे नहीं गिर सका मैं और बीच में ही रुक गया। अर्णव की बात सुनकर कबीर चौंक गया। उसको समझ ही नहीं आया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इधर अर्णव कह रहा है कि उसने कुछ किया नहीं है और माधुरी वहाँ गुस्से से फायर हुई जा रही है। उसने अर्णव के चेहरे पर गहरी निगाहें टिकाते हुए फिर से सवाल किया, मतलब तूने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया? पूरी तरह से नहीं, पर जो जख्म उसे दिया है उसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी, और अभी ऐसे ही जाने कितने ही जख्मों को बर्दाश्त करना होगा उसे। उसके साथ वो सब होगा जो वो औरों के साथ करती है। उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी उसे, तब तक जब तक वो टूटकर बिखर न जाए। अर्णव की आंखें अब भी बंद थीं और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। चेहरे पर गुस्सा, नफरत, रोष जैसे कई भाव पैर जमाए बैठे थे। कबीर ने उसकी बात सुनी तो गंभीरता से बोला, अर्णव तू उसके साथ चाहे जो करे, मैं कभी तुझे नहीं रोकूंगा, पर ध्यान रहे कि खुद को कभी उसके जितना नीचे मत गिराइयो। जो हो गया सो हो गया, पर दोबारा उसके करीब जाने या उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करियो। वो चाहे जैसी हो, पर एक लड़की के मान को भंग करना महापाप है, और अगर तूने ये पाप कर दिया तो तू खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगा, कभी खुद से नजरें नहीं मिला सकेगा। कबीर की बातें सुनते हुए अर्णव की आंखों के सामने रात का दृश्य किसी फिल्म जैसे घूमने लगा। एक बार फिर धृति की आंसुओं से भरी निगाहें जाने क्यों पर उसके मन को व्याकुल कर गईं। उसने अपनी आंखें खोल दीं और उठकर कैबिन के बैक साइड के ग्लास वॉल के पास चला आया। कबीर की बात पूरी हुई तो अर्णव ने ग्लास वॉल से दिखते समुद्र को देखते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने कहा ना, मैं चाहूं भी तो उसके जितना नीचे नहीं गिर सकता, और वैसे भी उस चालबाज धोखेबाज कैरेक्टरलेस गोल्ड डिगर लड़की की तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करता। रात को जो हुआ वो बस उसे एहसास दिलाने के लिए था कि जब कोई बिना आपकी मर्जी के आपके करीब आता है, आपको छूता है तो कैसा लगता है। पर ताज्जुब की बात है, अपनी मर्जी से आज तक जाने कितने लड़कों के साथ रही होगी वो, और कल नाटक ऐसे कर रही थी जैसे सती सावित्री हो। अर्णव के चेहरे पर कड़वाहट के भाव उभर आए। कबीर कुछ पल खामोशी से उसकी बातों के बारे में सोचता रहा, फिर गंभीरता से बोला,
आगे का क्या सोचा है तूने? सोचा तो बहुत कुछ है, तू बस देखता जा कि मैंने कैसे उसकी जिंदगी तबाहो बर्बाद करता हूँ। बहुत शौक से उसे लोगों की इज्जत, उनकी फीलिंग और जिंदगी के साथ खेल खेलने का। अब उसकी जिंदगी तमाशा बनेगी। इतना दर्द दूंगा उसे कि मौत के लिए तड़पेगी वो, पर मेरी इजाजत के बिना मौत भी नसीब नहीं होगी उसे। इतना तोड़ दूंगा कि मेरे पैरों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगेगी, और उस दिन वही मौत वो मरेगी जो उसके आकाश को दी थी। अर्णव के चेहरे पर गुस्से, नफरत और रोष के साथ अजीब सा दर्द झलकने लगा था। कबीर आगे कुछ बोल नहीं सका, बस आगे बढ़कर उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अर्णव की आंखों में नमी तैर गई, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया और दर्द भरी आह भरते हुए बिना किसी भाव के बोला, मैं ठीक हूँ, तू जाकर अपना काम कर, बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। कबीर ने सर हिला दिया और वहां से चला गया। अर्णव कुछ पल वहीं खड़ा समुद्र की लहरों को देखता रहा, फिर आकर अपना काम करने लगा। सुबह से शाम कब हुई किसी को पता ही नहीं चला। धृति चाह कर भी अपने घर नहीं जा सकी, उस कमरे में कैद अपनी ही सोच में खोई रही, ना एक बार भी कमरे से बाहर निकली और ना ही कुछ खाया पिया। शीला दो तीन बार पूछने भी आई, पर धृति ने इनकार कर दिया। अर्णव ने खुद को सारा दिन काम में डुबोए रखा और शाम को घर लौटा। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही उसे सामने शीला नजर आई, पर धृति कहीं नहीं दिखी। अर्णव ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कठोर लहजे में उससे सवाल किया, तुम्हारी मैडम कहाँ है? शीला ने उसका सवाल सुना और परेशान सी बोली, मैडम तो कमरे में है, आपके जाने के बाद अंदर गई तो दोबारा बाहर ही नहीं आई, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, इतनी बार पूछा पर हर बार भूख नहीं है कहकर इनकार कर दिया। शीला की बातें सुनकर अर्णव की भौहें तन गईं और आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो गुस्से में लंबे लंबे डग भरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। धृति रूम में बेड पर बैठी अपने ही ख्याल में गुम थी, जब तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खोला और साथ ही अर्नव की गुस्से भरी आवाज वहां उस सन्नाटे में गूंज उठी। धृति! धृति आवाज सुनकर भय से कांप उठी और घबरा कर सामने देखने लगी। अर्नव का गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने जलती निगाहों से धृति को घोरा और गुस्से में अपने पैरों तले जमीन को रौंदते हुए उसके तरफ बढ़ने लगा। अर्नव को यहाँ इतने गुस्से में देखकर धृति की हालत भय से खराब हो गई कि कहीं फिर से वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश न करे। धृति घबराई निगाहों से अर्नव को देखने लगी और जब अर्नव उसके करीब आया तो डर कर पीछे सरकने लगी, पर तब तक अर्नव उसके पास पहुंच चुका था। उसने धृति की बांह पकड़कर उसके पीठ से लगाते हुए उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसके चेहरे की तरफ झुक गया। धृति उसके सीने से चिपकी हुई थी, उसकी सांसें थम गई थीं और वो डरी सहमी हुई सी उसे देखने लगी थी।